नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे जो साथ है, राही चल राह अंधेरी है कोई ना टिकाना, दूर सितारा चमके वही तुम ठहरना। राह अंधेरी है कोई ना टिकाना, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की अनुग्रह में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी श्रोताओं का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपनी आशीषें, गवाहियां और प्रार्थना निवेदन हम तक पत्र और फोन के द्वारा पहुंचाते हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करें। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों भजन संहिता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते और सीखते हैं निश्चित रूप में से हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। इस समय को हम में से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आज हम भजन संहिता 8 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और आज का हमारा विषय है मसीही संबंधित भजन, जिसमें मसीह के मनुष्यत्व और उसकी मानवीय विजय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भजनों को मसीही संबंधित कहने का कारण यह है कि उन्हें सीधा सीधा मसीह के संबंध में नए नियम में संदर्भित किया गया है। सच तो यह है कि इस भजन का संदर्भ प्रभु यीशु ने स्वयं दिया है। मती अपने सुसमाचार वृतांत में अध्याय 21 में यीशु का यरूशलेम में प्रवेश दर्शाता है और वहां पर लोग कह रहे थे, मती 21 अध्याय के 9 में, दाऊद के संतान की होसन्ना। महायाजक और शास्त्रियों ने कहा, मती रची सुसमाचार 21 अध्याय के 16 पद में, क्या तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं? प्रतिउत्तर में यीशु ने भजन संहिता 8 उसके 2 को दोहराया, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। इसके कहने का अभिप्राय था कि वे धर्म शास्त्र पढ़ें तो जानेंगे कि बच्चे क्यों यह नारा लगा रहे थे। इस भजन का दूसरा संदर्भ पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 27 पद में पाया जाता है, पुनरुत्थान का अध्याय। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, इसे हम भजन 8 उसके 6 में देखते हैं। अतः स्पष्ट है कि यह भजन आज के समय से संबंध नहीं रखता है। देखिए पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वह आप अलग रहा। मेरे मित्रों, आज हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देख रहे हैं, तथापि सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ जिसे हम इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय उसके 5-8 में पाते हैं, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी न रख छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। मेरे मित्रों, यहाँ फिर हमें बताया गया है कि सब कुछ अभी उसके अधीन नहीं है। स्पष्ट है कि भजन 8 भविष्य की ओर संकेत करता है। देखिए पद 9 लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्ग दूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। निश्चय ही भजन 8 यीशु का वर्णन करता है। यह महान मसीह संबंधित भजन का आरंभ है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारे पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। यह आज की स्थिति नहीं है। आज संसार में परमेश्वर का नाम महान नहीं है। मैंने एक बार एक वृद्ध को सुना, वह परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले रहा था जबकि उसके पांव कब्र में लटक रहे थे। एक बार मैंने सड़क पर चलते हुए एक बूढ़ी माँ को गाली बकते हुए सुना, जबकि देखने में वह एक भद्र महिला का रूप धारण किए हुए थी। हाय, वह कैसे ऐसा व्यवहार कर सकती थी। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर का नाम आज प्रतिष्ठित नहीं है। सच तो यह है कि आज मनुष्य परमेश्वर का नाम ही नहीं लेना चाहता है या नहीं लेता है। आज संपूर्ण समाचार का कर्ता वही है, परंतु उसका नाम कभी नहीं लिया जाता है। विनाश में उसका नाम अवश्य लिया जाता है, जैसे कि वह विनाशक है। जहां तक परमेश्वर का प्रश्न है, वह बुरा ही बुरा है। आज का विचार है कि मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता है, अतः अश्लील चित्र देखने से उन्हें ना रोका जाए। मित्रों, क्या मुझे स्वतंत्रता नहीं कि मैं स्कूलों में प्रार्थना करवाऊं? आपका क्या विचार है? मैं परमेश्वर की सार्वजनिक पहचान बनवाना चाहता हूं। क्या इस देश में मुझे स्वतंत्रता नहीं है? आज परमेश्वर का नाम प्रतिष्ठित नहीं है। एक बार मैं टीवी पर देख रहा था कि एक पर्वतरोही पर्वत पर चढ़ रहा था। दृश्य बड़ा ही रोमांचकारी था। वहां ऊपर बड़ी तेज हवाएं चल रही थी। वह प्राचीन पर्वत स्पष्ट कह रहा था कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। वहां परमेश्वर का नाम नहीं था। पहाड़ों पर कूड़ा, चट्टाने और पेड़ मात्र पड़े थे। वे न तो कुछ बोलते हैं और न ही उग्रता का प्रदर्शन करते हैं और न ही मनुष्य पर उसकी नगण्यता प्रकट करते हैं। यह परमेश्वर ही है जिसने पहाड़ों को बनाया कि ऐसा प्रदर्शन करें। एवरेस्ट पर्वत पर परमेश्वर उपस्थित है, जो मनुष्य पर प्रकट करता है कि वह कैसा अकिंचन प्राणी है। परंतु मनुष्य कभी नहीं सीखा कि परमेश्वर कैसा महान है। वे केवल प्रकृति के विषय चर्चा करना ही जानते हैं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आज संसार में परमेश्वर का नाम माननीय नहीं है? कदापि नहीं। जी हाँ, भजन 8 का यह पहला पद एक भविष्यवाणी है जो एक महिमामय भविष्य की ओर संकेत करती है। यह मसीह संबंधित भजन है जिसमें हमें परमेश्वर के जन का दर्शन प्राप्त होता है। इस भजन में मसीह की मानवता और मानव रूप में उसकी सर्वोपरि विजय का प्रकाशन दिया गया है। भजन में हमने मनुष्य और परमेश्वर से उसके विद्रोह की अवस्था को देखा था। भजन 8 में हम देखते हैं कि अंततः मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया है और एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर का नाम संपूर्ण पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यह भजन प्रधान बजाने वाले के लिए कि गीतित का राग पर बजाया जाए। इसी प्रकार भजन संहिता 81 और 84 में भी प्रधान बजाने वाले के लिए गीतित की राग पर बजाने हेतु समर्पित है। इसका अर्थ क्या है? किसी बाइबल विद्वान ने कहा कि गीतित गत नगर का एक तार वाला बाजा था। आपको स्मरण होगा कि राजा शाऊल से भागकर दाऊद ने गत नगर में शरण ली थी। अति संभव है कि दाऊद ने वहां यह वाद्य बजाना सीखा था और आगे चलकर इसराइल में इसे प्रचलित किया। वल्गेट रोमी भाषा की बाइबल और सेप्टुजेंट यूनानी भाषा की बाइबल इसे दाख का रसकुंड अनुवाद करती है और मेरे विचार में इसका अपना महत्व है, क्योंकि भजन 8 के रसकुंड का उल्लेख करता है जिससे होकर मसीह यीशु निकला था आपके और मेरे लिए। मनुष्य होने के कारण उसने सबके लिए मृत्यु का स्वाद चखा। उसने रसकुंड की कड़वाहट का अनुभव किया। आगे चलकर यशाया हमें बताएगा कि प्रभु यीशु एदोम से आ रहा है। यशाया 63 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है और देश देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलाकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। मेरे मित्रों, उसके वस्त्रों पर लगे धब्बे उसके अपने लहू के नहीं, उसके शत्रुओं के लहू के थे। अतः यदि मसीह का लहू आपके लिए अर्थहीन है और आपका उद्धार नहीं हुआ है, तो आपको दंड दिया जाएगा। या तो उसका लहू या आपका लहू। आज संसार में मनुष्य इसी स्थान पर है। भजन संहिता 8 दाऊद का भजन है। कुछ ऐसे विचारक भी हैं जो इसमें एक पुत्र की मृत्यु देखते हैं, क्योंकि उनके विचार में यह भजन दाऊद ने गोलियत की मृत्यु के समय में लिखा था। या फिर बतशेबा से उसे पुत्र की मृत्यु के समय लिखा था। मैं ये सब विचार आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूँ कि इस भजन का महत्व महान और गहरा है। मेरा एक प्राध्यापक था जिसने इस भजन को शीशों के सितारे शीर्षक दिया था, क्योंकि यह भजन आकाश, चांद, सितारे से होता हुआ शीशियों तक जाता है। यह भजन 19वें भजन का समानांतर है, जबकि उसका प्रतिरूप भिन्न है। वह धर्म शास्त्र तथा सूर्य की चर्चा करता है भजन संहिता 8 में, जबकि सूर्य का उल्लेख कदापि नहीं है। तो मेरे मित्रों, आइए अब हम भजन संहिता 8 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों को दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। प्रभु ने इन पदों का अर्थ स्पष्ट किया है जब वह कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 3 पद में यीशु ने पृथ्वीवास के समय कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 15 पद में नारा लगाने वाले भी अधिकांश बच्चे ही तो थे जब वे होशाना चिल्ला रहे थे। यीशु ने इस यरूशलेम प्रवेश को विजय यात्रा कहा है, परंतु मैं इसे विजय यात्रा नहीं मानता हूँ। विजय यात्रा के लिए हमें उसके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करनी होगी। उस समय उसकी वास्तविक विजय यात्रा होगी और उस समय वह अपना राज्य स्थापित करेगा। इस बीच हमें फिर कर बच्चों के समान बनना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें नया जन्म पाकर शिशु बनना है। शिशुओं के समान ही हमें अपना घमंड त्याग कर शुद्ध विश्वास अपनाना होगा। आबोध बच्चों का विश्वास कैसा महान होता है, उसी प्रकार हमें बनना है। यहाँ पर शारीरिक रीति से बच्चे बनने या शिशु बनने की बात नहीं है, आत्मिक रीति से जन्म लेकर आत्मा में शिशु बनना है, ताकि हम उसके पीछे चल सकें। इस भजन में परमेश्वर को सृजनहार कहा गया है। आपके समक्ष प्रकृति है, मनुष्य है जो एक प्राणी है। यहाँ एक संबंध व्यक्त किया गया है। आइए हम भजन संहिता 8 उसके 3 पद को पढ़ें। लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारा गण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। तेरे हाथों का कार्य अर्थात परमेश्वर ने उन्हें अपने स्थान पर रखा है। आकाश में प्रकाशमान चांद और सितारों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वे वहाँ क्यों हैं। मैं केवल यही जानता हूँ कि वे वहाँ क्यों हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां रखा है। मेरे अध्ययन कक्ष में कुछ किताबें रखी हुई हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे वहां हो, परंतु सितारों की व्यवस्था मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है या नहीं की गई है। मैं तो दक्षिण के सितारों को पश्चिम में रखना चाहता हूं, परंतु वे नहीं है। वहां हम नहीं रख सकते। जहां प्रभु यीशु उन्हें रखना चाहता है वही तो है जिसने उन्हें अपने हाथों के कार्य द्वारा स्थापित किया है। मेरे प्रियो, आकाश उसकी उंगली की कला है। यह एक रोचक बात है कि जब वचन परमेश्वर के उद्धार की चर्चा करता है, तब जो शब्द काम में लिया जाता है उसका अर्थ है खाली हाथ। यशाया के पुस्तक 53 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। परंतु जब वह स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की चर्चा करता है, तब वह कहता है कि वे उसकी उंगली की कला है, जैसे एक स्त्री क्रोशिया से काम करती है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि पर अपनी महिमा स्थापित की है, यह हमारे लिए महान बात है और सृष्टि में उसकी महिमा व्यक्त है। परंतु हम सृष्टि की उपासना नहीं करते हैं, हम सृष्टि के रचने वाले की उपासना करते हैं। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। उसकी उंगली के कार्य, उसकी महिमा और उसके सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। भजन संहिता 8 उसके 4 में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य क्या है, आज तक इस भेद पर विचार किया जा रहा है। मनुष्य एक जटिल प्राणी है, वह मानव जाति का सदस्य है जिसकी उत्पत्ति पर आज भी समाधान खोजा जा रहा है। धर्मशास्त्र के अनुसार तो परमेश्वर ने हमारी रचना करके हमें यहाँ रखा है। मनुष्य ने अनुचित काम किया और भटक गया, वह परमेश्वर का आज्ञा पालक न रहा और उसने परमेश्वर पर विश्वास करना भी छोड़ दिया। मेरे मित्र, अब परमेश्वर को मनुष्य की चिंता करने की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर ने मनुष्य का सर्वनाश करके उससे हाथ क्यों नहीं धो लिए? मनुष्य एक विफलता का एक महान पुतला है। हमें यह सुनना अच्छा नहीं लगता है, हमें सफलता अच्छी लगती है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है? कैंसर विशेषज्ञ होना, क्योंकि मुझे इसलिए जानकारी है कि बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित मेरे पास आते थे और मेरी समझ में वे निराशवादी हैं। उनके पास सफलताओं की बड़ी सूची नहीं है। मनुष्य के पास भी सफलता की गाथा नहीं है, वह विफलता का पुतला है। उसने संसार में अव्यवस्था फैला रखी है। भजनकार कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य क्यों महत्वपूर्ण है। 2012 वर्ष पूर्व मनुष्य के मध्य प्रभु यीशु मसीह आया था। वह इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर मर गया कि हमें समझा पाए कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। उसने हमें अपने प्रेम के द्वारा नहीं बचाया है, उसने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया है, क्योंकि हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। हम तो वास्तव में उद्धार के योग्य ही नहीं है, परंतु पुत्र परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया ताकि मैं और आप बच जाएं। मैं नहीं जानता कि किसी अन्य ग्रह पर जीवन है या नहीं। हो सकता है वहां जीवन हो, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि प्रभु यीशु वहां क्रूस पर मरने के लिए नहीं गया है। इस उद्देश्य के निमित्त वह केवल पृथ्वी पर आया था। भजन संहिता 8 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। पुराने नियम में जब जब यीशु प्रकट हुआ तब तब वह स्वर्गदूत की नाई दिखाई दिया था, परंतु जब वह बेतलहम में आया तब वह उनसे नीचे के स्तर पर था। वह मनुष्य की समानता में आया था। भजन संहिता 8 उसके 6 में लिखा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। मनुष्य को परमेश्वर के हाथों का काम पर प्रभुता प्रदान की गई थी, परंतु मनुष्य उससे वंचित हो गया। आज इस जगत का नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है। विज्ञान ने सोचा है कि वह नियंत्रण कर सकता है, परंतु आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने तो प्रदूषण फैला रखा है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पृथ्वी एक विशाल ढलाव बन जाएगी। यह सब विज्ञान का परिणाम है। यदि आप विज्ञान के उपासक हैं और इस कूड़े से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको एक सहायक परमेश्वर की आवश्यकता है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, परंतु इस समय ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और यीशु फिर से जब तक दोबारा नहीं आते हैं तब तक ऐसा होना संभव नहीं है। आइए हम भजन संहिता 8 उसके 7 और 8 पद को पढ़ते हैं। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। परमेश्वर ने सब पशु पक्षी समुद्र के प्राणी बनाए हैं। वही एक सृजनहार है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 20 पद में पौलुस कहता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हम आसपास में देखकर ही परमेश्वर की हस्तकला का दर्शन पाते हैं। मेरे मित्र, सारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा रची गई है। भजन संहिता 8 उसके 9 पद में लिखा है, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। मेरे मित्रों, आज तो नहीं है, परंतु एक दिन अवश्य परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर महान होगा। आज हम एक कहरते हुए और कुड़कुड़ाते हुए इस जगत में वास करते हैं। यह जगत मुक्ति की प्रतीक्षा में है। रोमियो के पत्र 8:22 में भी हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर सर्वोपरि है। उसने स्वर्ग के स्थानों से भी ऊपर अपनी महिमा स्थापित की है और उससे ऊपर विराजमान एक पुरुष है जो 2012 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया था कि बेतलेहम में जन्म ले। वह आज परमेश्वर की दाहिनी ओर महिमा से पूर्ण विराजमान है। हम केवल विश्वास के द्वारा उसे देखने योग्य होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3:18 उसके 18 में लिखा है, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यूहन्ना लिखता है 1 यूहन्ना 3:2 में, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर की संतान का कैसा महिमामय भविष्य है, या उज्जवल जीवन है। मेरे मित्रों, मैं आपको फिर से एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यह भजन मसीह संबंधित भजन है। इसमें मसीह यीशु की मानवता और मानव रूप में उसकी विजय का वर्णन है। हम इसकी सीमा पर खड़े हैं जो उसका स्तुति गान करता है। मुझे विश्वास है कि आपने इस बात को अवश्य ही इस भजन को सुनकर और पढ़कर समझ लिया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में प्रभु यीशु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की है और अब उस पर आप अधिक भरोसा भी करेंगे, क्योंकि वह हमारा सृष्टिकर्ता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कहीं तुम भटक ना जाना, यही है वो रास्ता, ले जाएगा तुझको मिलने दुनिया के राजा से। कहीं तुम भटक ना जाना, यही है वो रास्ता, ले जाएगा तुझको मिलने दुनिया के राजा से। यही तेरी मंजिल, यही है होता जा, राही चल।